एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम शेक्सपियर पर बात करने वाले हैं, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे हमने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा है। हम जर्मेन ग्रियर की किताब शेक्सपियर पर एक नजर डालेंगे, जो ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सीरीज का हिस्सा है।
बिल्कुल, और ये किताब मेरे ख्याल से आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये शेक्सपियर की वो जो एक बनी बनाई छवि है ना, एक भव्य लगभग देवता जैसी।
हाँ हाँ, वो बार्ड वाली छवि।
हाँ, वो ही बार्ड। तो ग्रियर उसे तोड़ती हैं, वो हमें एक असली हार्ड मास के शेक्सपियर से मिलवाती हैं, एक प्रोफेशनल लेखक जो अपने जमाने की चुनौतियों और जरूरतों के हिसाब से लिख रहा था। ये नजरिया उनके काम को समझने का एक ताज़ा और शायद ज़्यादा सच्चा तरीका देता है। और ये नज़रिया लाने वाली लेखिका जर्मेन ग्रियर, वो खुद भी काफ़ी दिलचस्प शख्सियत हैं। वो एक ऑस्ट्रेलियाई एकेडमिक हैं, लेखिका हैं और जानी मानी पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी। उनकी वो 1970 की किताब द फीमेल यूनिच, उसने तो नारीवादी आंदोलन में काफ़ी हलचल मचा दी थी।
जी हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक नारीवादी विचारक ही नहीं है, उन्होंने कैम्ब्रिज से अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की है। और कमाल की बात यह है कि उनकी थीसिस शेक्सपियर की शुरुआती कॉमेडीज पर ही थी, तो उनके पास शेक्सपियर पर एक सॉलिड एकेडमिक पकड़ भी है, जबरदस्त।
तो फिर ऐसा क्या खास है ग्रियर के नजरिए में? मुझे लगता है एक तो उनकी वो बेबाकी है, वो थोड़ी क्या कहते हैं आइकनोक्लास्टिक है, स्थापित मान्यताओं और शेक्सपियर को लेकर जो एक श्रद्धा भाव है ना।
हाँ हाँ, बार्डोलेट्री जिसे वो कहती हैं।
हाँ, बार्डोलेट्री, उस पर सवाल उठाने से वो हिचकती नहीं, उसे वो चुनौती देती हैं।
और दूसरा उनका वो फेमिनिस्ट लेंस, ये उन्हें शेक्सपियर के नाटकों में महिलाओं का चित्रण, जेंडर डायनेमिक्स और सामाजिक ताने बाने को एक अनोखे ढंग से देखने की क्षमता देता है। और साथ ही ये भी है कि वो मुश्किल अकादमिक विचारों को भी आम पाठक के लिए सरल दमदार भाषा में पेश कर पाती हैं। वो शेक्सपियर को म्यूजियम की चीज नहीं बल्कि एक सोचने समझने वाला दिमाग मानती हैं। अब जरा किताब पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये साफ कर देना जरूरी है कि ये पारंपरिक जीवनी बिल्कुल नहीं है। ग्रियर इस बात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती कि शेक्सपियर का जन्म कब हुआ, शादी किससे हुई या उनके वो खोए हुए साल कहां बीते, ये सब उन्हें थोड़ा सतही लगता है।
हाँ, वो इसे एक बौद्धिक जीवनी कहती हैं, है ना? मतलब शेक्सपियर के दिमाग, उनकी सोच, उनके नैतिक रुझान और लिखने के तरीकों को समझने की कोशिश, और वो भी सीधे उनके नाटकों और कविताओं के जरिए।
बिल्कुल सही, उनका मानना है कि असली शेक्सपियर उनके लिखे हुए में बसता है, न कि वो चर्च के पुराने रिकॉर्ड्स में।
तो उनका तर्क ये है कि व्यक्तिगत जीवन की उन अधूरे थोड़े भ्रामक डिटेल्स की बजाय उनके नाटकों की जो बौद्धिक संरचना है, जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर है,
हाँ,
उसे एनालाइज करना ज्यादा जरूरी है।
एग्जैक्टली, और किताब का एक बड़ा मकसद है शेक्सपियर के उस नैसर्गिक प्रतिभा वाले मिथक को तोड़ना। ग्रियर जोर देती हैं कि वो कोई ऐसे ही अचानक प्रकट हुए जीनियस नहीं थे, बल्कि उन्होंने बाकायदा शिक्षा ली थी, स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल की पढ़ाई, जहां लैटिन, क्लासिकल रिटोरिक मतलब अलंकार शास्त्र और ओविड जैसे कवियों को गहराई से पढ़ाया जाता था। वो उनके पूरे करियर की नींव बनी।
अच्छा, तो ये किताब हमें शेक्सपियर के बौद्धिक संसार की एक तरह से सैर कराती है, जैसा वो उनके काम में झलकता है।
हाँ,
जैसे पोएटिक्स यानी काव्य रचना का शिल्प, एथिक्स यानी नैतिकता की उनकी समझ, पॉलिटिक्स मतलब सत्ता और राजकाज पर उनके विचार, और वो टिलियोलॉजी भाग्य, मृत्यु और जीवन के परम उद्देश्य के बारे में उनकी सोच।
जी, और मकसद शेक्सपियर को छोटा करना नहीं बल्कि उन्हें ज्यादा मानवीय और इसलिए शायद ज्यादा सुलभ बनाना है। जब हम उन्हें कामकाजी नाटककार, एक वर्किंग प्रोफेशनल के तौर पर देखते हैं, तो उनकी जो असाधारण उपलब्धि है वो और भी ज्यादा प्रभावशाली लगती है ना? ये किताब सिखाती है कि उनके नाटकों को कैसे पढ़ा जाए, एक जीनियस के दिमाग की उपज के तौर पर, ना कि सिर्फ इतिहास के पन्नों के तौर पर।
तो चलिए ग्रियर के विश्लेषण के कुछ मुख्य हिस्सों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पहला है जीवन। यहाँ ग्रियर क्या कहती हैं? पारंपरिक जीवनी को तो वो नकारती हैं।
हाँ, यहीं पर ग्रियर सबसे ज्यादा परंपरा को चुनौती देती हैं। वो कहती हैं कि शेक्सपियर के जीवन के जो गिने चुने तथ्य हमें पता हैं, जन्म, बपतिस्मा, शादी, बच्चे, फिर लंदन में काम, प्रॉपर्टी खरीदना, वसीयत, मौत, ये सब उनके दिमाग या उनकी कला के बारे में कुछ खास नहीं बताते, और बाकी सब तो अटकलें हैं।
अटकलें मतलब जैसे उनकी शादी कैसी थी या
हाँ, शादी कितनी खुशहाल थी, उनकी सेक्सुअलिटी क्या थी, वो खोए हुए साल में क्या हुआ, ये सब ग्रियर के लिए बेकार की बातें हैं, अटकलबाजी है।
तो फिर असली शेक्सपियर कहाँ है अगर जीवन के तथ्यों में नहीं है तो?
ग्रियर के मुताबिक उनकी शिक्षा में स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल की वो कठोर ट्रेनिंग, लैटिन रटना, भाषण कला मतलब रिटोरिक के नियम सीखना, क्लासिकल लेखकों को पढ़ना, इसने उन्हें वो भाषाई हथियार दिए, वो टूल्स दिए जिनका इस्तेमाल उन्होंने जिंदगी भर किया। यहीं से उनके सोचने का ढांचा बना, उनका असली जीवन उनके दिमाग में था, उनके लिखे शब्दों में था।
अच्छा, तो अगर जिंदगी के तथ्य उतने अहम नहीं तो फिर उनके लिखने का तरीका यानी पोएटिक्स के बारे में ग्रियर क्या उजागर करती हैं? क्या वो कोई अकेले बैठकर प्रेरणा का इंतजार करने वाले रोमांटिक कवि थे?
बिल्कुल नहीं। ग्रियर शेक्सपियर को एक बेहद प्रैक्टिकल, एक शिल्पकार के रूप में देखती हैं। देखिए, वो एक थिएटर कंपनी के हिस्सेदार थे, लॉर्ड चेम्बरलिन्स मैन, जो बाद में किंग्स मैन बनी। उनका काम था ऐसे नाटक लिखना जो चलें, जिनसे पैसा बने। उनकी कला थिएटर की जरूरतों से, उसकी डिमांड से जुड़ी थी।
ये दिलचस्प है। मतलब वो एक्टर्स को ध्यान में रखकर लिखते होंगे, किसके लिए लिख रहे हैं ये मायने रखता था।
हाँ हाँ, बिल्कुल। वो जानते थे कि रिचर्ड बर्बेज त्रासद भूमिकाओं में कमाल कर सकते हैं या विल कैंपे कॉमेडी में माहिर हैं। वो ये भी जानते थे कि जो लड़के महिला भूमिकाएं निभा रहे हैं उनकी सीमाएं और क्षमताएं क्या हैं। उनके नाटक इन सब के लिए लिखे गए थे। वो सिर्फ कागज के लिए नहीं, मंच के लिए लिख रहे थे। ऐसी भाषा जो बोलने में असरदार हो, सुनने में जानदार लगे, लाइव परफॉर्मेंस के लिए।
और उनका वो मशहूर ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल, वो अतुकांत छंद,
ये दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने उसे सिर्फ एक मीटर, एक छंद की तरह नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि उसे भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक लचीला, एक फ्लेक्सिबल जरिया बना दिया।
और दूसरों से कहानियां उधार लेना ग्रियर के लिए ये चोरी नहीं, व्यावहारिकता थी,
कॉमन प्रैक्टिस थी उस जमाने में। वो मामूली कहानियों को भी अपनी कला से असाधारण बना देते थे। ये दिखाता है कि कला और कॉमर्स, आर्ट और बिजनेस वहां साथ साथ चल रहे थे।
ये बात तो सोचने वाली है। अब आते हैं एक और बड़े सवाल पर, नैतिकता यानी एथिक्स। क्या शेक्सपियर हमें सिखाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत? कोई मॉरल साइंस का पाठ?
ग्रियर कहती हैं, जीने ही बिल्कुल नहीं। शेक्सपियर नैतिक उपदेशक नहीं, बल्कि नैतिक दुविधाओं के, मॉरल डिलेमास के चित्रे हैं। वो कीट्स के शब्द नेगेटिव कैपेबिलिटी का जिक्र करती हैं, मतलब अनिश्चितता और संदेह के साथ जीने की क्षमता, बिना हड़बड़ी में किसी नतीजे पर पहुंचे, बिना किसी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। शेक्सपियर के नाटक हमें यही करने पर मजबूर करते हैं।
मतलब कोई सीधा सपाट नैतिक संदेश नहीं मिलने वाला, कोई मोरल ऑफ द स्टोरी टाइप चीज।
हाँ, उनके नाटकों से कोई एक सिंगल कोहेरेंट नैतिक व्यवस्था निकालना नामुमकिन है। वो मैकबेथ के अपराध और ब्रूटस के अपराध को अलग अलग दिखाते हैं, दोनों की अपनी जटिलताओं के साथ। हैमलेट या मैकबेथ के सोलिलॉक्वीज, वो जो स्वागत भाषण है, वो हमें उनके अंदर के नैतिक संघर्ष दिखाते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
मेजर फॉर मेजर जैसे नाटक तो सवालों के ढेर लगा देते हैं, न्याय क्या है, दया क्या है, पवित्रता क्या है। ग्रियर मानती हैं कि शेक्सपियर की दिलचस्पी इंसानी स्वभाव की उलझनों में ज्यादा थी, न कि कोई ऊपर से आए नियम बताने में। वो हमें नैतिक कसरत करवाते हैं, रेडीमेड जवाब नहीं देते।
ये नैतिकता वाली बात राजनीति यानी पॉलिटिक्स से भी जुड़ती होगी। क्या शेक्सपियर राजा या रानी के पक्ष में लिखते थे? मतलब क्या वो व्यवस्था के, एस्टेब्लिशमेंट के समर्थक थे?
हाँ और ना। ग्रियर मानती हैं कि वो निश्चित रूप से अपने समय के डर, जैसे सिविल वॉर का डर को समझते थे और दिखाते भी थे। उनके नाटकों में ऑर्डर की जरूरत दिखती है, लेकिन वो सत्ता के सीधे साधे प्रोपोगेंडिस्ट नहीं थे। वो सत्ता के मनोविज्ञान, पावर साइकोलॉजी में गहरी रुचि रखते थे। राजा होने का मतलब क्या है, शक्ति इंसान को कैसे बदलती है, हेनरी पंचम का वो अकेलापन हो या रिचर्ड द्वितीय का अहंकार, वो सब दिखाते हैं।
और क्या वो सत्ता पर सवाल भी उठाते थे, आलोचना करते थे?
बिल्कुल। उनके ऐतिहासिक नाटक दिखाते हैं कि सत्ता के लिए हिंसा का चक्र कैसे चलता रहता है, एक के बाद एक। और सबसे तीखी राजनीतिक टिप्पणियां अक्सर हाशिए के किरदारों से आती हैं, मार्जिनलाइज्ड कैरेक्टर्स से।
जैसे?
जैसे किंग लियर का विदूषक, जो राजा से वो सच कहता है जो कोई दरबारी नहीं कह सकता, या हेनरी पंचम के आम सैनिक, जो युद्ध की निरर्थकता पर, उसकी कीमत पर सवाल उठाते हैं। तो वो सत्ता का समर्थन करते हुए भी उस पर तीखे सवाल दागते हैं। वो हमें सत्ता के खेल को अलग अलग नजरों से दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं।
अब बात करते हैं थोड़े और गहरे, शायद थोड़े फिलोसॉफिकल विषय की, टीलियोलॉजी यानी भाग्य, मृत्यु, जीवन का अंतिम उद्देश्य। क्या शेक्सपियर धार्मिक लेखक थे, ईसाई नजरिए से लिखते थे?
ग्रियर का तर्क यहाँ थोड़ा अलग है। वो मानती हैं कि हालांकि शेक्सपियर का समाज ईसाई था, उनके नाटकों की दुनिया काफी हद तक सेक्युलर और मानवतावादी है। पात्र भले ही देवताओं को पुकारें, गॉड्स को इन्वोक करें, लेकिन मदद शायद ही कभी आती है। किंग लियर में ग्लोसेस्टर का वो भयानक वाक्य याद है, जैसे शरारती लड़कों के लिए मक्खियां होती हैं, वैसे ही हम देवताओं के लिए हैं। वे हमें अपने मनोरंजन के लिए मारते हैं।
बाप रे, ये तो बहुत ही डार्क है। मतलब इंसान अपने कर्मों या संयोग के भरोसे है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं।
काफी हद तक ऐसा ही लगता है। ग्रियर के मुताबिक भूत या डायने भी बाहरी अलौकिक शक्तियों से ज्यादा किरदारों के अपने अंदरूनी डर या इच्छाओं का प्रतीक लगती हैं। जैसे हैमलेट का भूत उसके दुख और बदले की भावना को दिखाता है, या मैकबेथ की डायने उसकी दबी हुई महत्वाकांक्षा को। फोकस इसी दुनिया पर है, यहां और अभी पर है, जीवन कैसे जिया जाए। मृत्यु अक्सर एक अंत की तरह आती है, जिसके बाद स्वर्ग या नरक का कोई स्पष्ट वादा नहीं होता। प्रॉस्पेरो का वो मशहूर भाषण, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, वो जीवन की क्षण भंगुरता, उसकी इम्परमनेंस को स्वीकारना है, एक तरह का ह्यूमैनिस्ट एक्सेप्टेंस है।
और आखिर में सोशियोलॉजी, समाज का ताना बाना। यहाँ ग्रियर का नारीवादी दृष्टिकोण जरूर सामने आता होगा। महिलाओं के चित्रण पर वो क्या कहती हैं?
हाँ बिल्कुल, ग्रियर विश्लेषण करती हैं कि शेक्सपियर ने अपने समाज की पितृसत्तात्मक सीमाओं के भीतर महिलाओं को कैसे चित्रित किया, और वो मानती हैं कि उन्होंने कमाल की जटिल, बुद्धिमान और मज़ेदार महिला पात्र रची, जैसे एज यू लाइक इट की रोजालैंड या ट्वेल्थ नाइट की वियोला। ये औरतें अक्सर मर्दों से ज्यादा तेज और साधन संपन्न हैं,
रिसोर्सफुल हैं।
हाँ, रिसोर्सफुल, और अपनी बुद्धि और भेष बदलने की कला, मतलब डिस्गाइज, उसका इस्तेमाल करके सामाजिक बंधनों को चुनौती देती हैं।
लेकिन क्या सभी महिला पात्र इतनी मजबूत हैं? डेस्टिमोना या ओफेलिया का क्या? वो तो बेचारी शिकार बनती हैं।
मिसोजिनी की विनाशकारी ताकत को भी बखूबी दिखाया है। इन पात्रों की त्रासदियां दिखाती हैं कि समाज महिलाओं पर कैसी क्रूरता थोप सकता है। वो विवाह को भी सिर्फ रोमांटिक नजरिए से नहीं देखती, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक समझौते, एक सोशल और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी देखती हैं। कुल मिलाकर वो महिलाओं के चित्रण को जटिल और कई बार अपने समय से आगे का मानती हैं। तो अगर हमें ग्रियर की इस पूरी पड़ताल से, इस पूरी किताब से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो, कुछ की टेकअवेज, तो वो क्या होंगी?
पहली बात तो मेरे लिए यही है कि शेक्सपियर कोई आसमान से उतरे देवता नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक कारीगर थे, एक प्रैक्टिकल क्राफ्ट्समैन। थिएटर की दुनिया, उसका व्यवसाय, उसके कलाकार, इन सब ने उनकी कला को गढ़ा। वो जमीन से जुड़े प्रोफेशनल थे, ये जानना उन्हें ज्यादा वास्तविक बनाता है, ज्यादा रिलेटेबल।
दूसरी, शेक्सपियर को समझना है तो उनकी बायोग्राफी से ज्यादा उनके लिखे हुए को पढ़ना जरूरी है। असली शेक्सपियर उनके नाटकों और कविताओं की सोच और बनावट में मिलता है, उनके इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर में। दिमाग उनके काम में है, जन्म मृत्यु के रिकॉर्ड में नहीं।
तीसरा, उनके नाटकों में नैतिक और राजनीतिक उलझने हैं, साफ जवाब नहीं। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, रेडीमेड सबक नहीं देते। ये बात आज भी बहुत जरूरी है, जब हर कोई तुरंत सिंपल जवाब चाहता है। यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी की कद्र है।
चौथा, उनकी दुनिया काफी हद तक सेक्युलर और इंसानी है। भाग्य भगवान के हाथ में कम, इंसानी फैसलों और गलतियों, ह्यूमन एरर और चॉइसेस से ज्यादा तय होता है। जिंदगी की मुश्किलें और इंसानी जज्बात, ह्यूमन इमोशंस, उनके नाटकों के केंद्र में है।
भाषा और बयाबाजी की ताकत, वो जो रिटोरिक उन्होंने ग्रामर स्कूल में सीखी, उस कला ने उन्हें ऐसे किरदार गढ़ने दिए जो मनोवैज्ञानिक रूप से इतने गहरे हैं और संवादों के जरिए इतने जटिल विचारों को सामने रख पाएं। और हाँ, महिलाओं का वो जटिल चित्रण भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी एक जरूरी पॉइंट है।
ग्रियर के कुछ विचारों को अगर हम यादगार पंक्तियों की तरह, कोट्स की तरह कहना चाहें, तो कुछ खास बातें जो दिमाग में रह जाए?
हाँ, जैसे पहली, असली शेक्सपियर पैरिश रिकॉर्ड में नहीं, बल्कि हैमलेट और किंग लियर की बौद्धिक संरचना में जीवित है। सीधा मतलब, काम जीवन।
दूसरी,
शेक्सपियर मंच के लिए लिखने वाले कवि नहीं थे, वे थिएटर के व्यक्ति थे, जिनकी कविता व्यावसायिक जरूरत और अभिनेताओं के लिए गढ़ी गई एक उपकरण थी,
यानी व्यावहारिक पेशेवर, प्रैक्टिकल प्रोफेशनल।
तीसरी, उनके नाटक नैतिक ग्रंथ नहीं है जो उत्तर देते हैं, बल्कि नैतिक व्यायामशालाएं हैं जहां हमारी अपनी नैतिक मांसपेशियां कसरत करती हैं।
मतलब,
सोचने पर मजबूर करने वाली नैतिक अस्पष्टता, हमें खुद सोचना है।
और चौथी, हालांकि उनके पात्र देवताओं का आह्वान कर सकते हैं, नाटकीय दुनिया ऐसी है जहां स्वर्ग चुप है और मानवता को अपना अर्थ खुद गढ़ना है, यानी सेक्युलर मानवतावाद। ये पंक्तियां वाकई ग्रियर के तर्क का सार हैं।
ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि ग्रियर का ये नजरिया, ये अप्रोच आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकता है, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या हो सकता है?
कई तरह से। मुझे लगता है पहला तो यही कि जटिलता और अस्पष्टता को स्वीकारना सीखें, जिसे ग्रियर कीट्स के हवाले से नेगेटिव कैपेबिलिटी कहती हैं, यानी ये मानना कि हर चीज का साफ हाँ या ना में जवाब नहीं होता, मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं। आज की पोलराइज दुनिया में ये समझना बहुत जरूरी है।
हाँ, ये तो है, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। और दूसरा,
गहरी सहानुभूति, डीप एम्पथी। जब हम शेक्सपियर के अलग अलग किरदारों, चाहे वो राजा हो, विदूषक, सैनिक या कोई मजबूर औरत के नजरिए को, उनके मोटिवेशंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को बेहतर समझ पाते हैं, हमारी अपनी समझ का दायरा बढ़ता है।
तीसरा, बातचीत और भाषा की समझ, कम्युनिकेशन और पर्सुएजन। शेक्सपियर भाषा के जादूगर थे। उनके नाटकों को ध्यान से पढ़ने से, उनकी भाषा के इस्तेमाल को देखने से हम सीखते हैं कि कैसे शब्दों से तर्क घड़े जाते हैं, भावनाएं जगाई जाती हैं या धोखा दिया जाता है। ये हमारी अपने बातचीत को, हमारे अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकता है।
चौथा, सत्ता के खेल को समझना, पावर डायनामिक्स। लीडरशिप, महत्वाकांक्षा, ताकत का नशा, करप्शन ऑफ पावर, ये सब शेक्सपियर के यहाँ भरा पड़ा है। ये सबक आज भी ऑफिस की राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक हर जगह काम आते हैं। टाइमलेस लेसन्स है ये।
और पांचवा कुछ?
हाँ, कला और मेहनत की कद्र करना, क्राफ्ट और प्रैक्टिकलिटी की। ग्रियर का शेक्सपियर हमें याद दिलाता है कि महानता सिर्फ प्रेरणा, इंस्पिरेशन से नहीं आती, उसके पीछे जबरदस्त हुनर, स्किल, अनुशासन, डिसिप्लिन और कड़ी मेहनत भी होती है। किसी भी काम में परफेक्शन लाने के लिए जो कोशिश लगती है, उसे समझना, उसकी सराहना करना।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये निकली कि शेक्सपियर के उस मिथक से, उस बार्ड वाली इमेज से थोड़ी आजादी मिलती है। उन्हें एक जीनियस मानने के दबाव से ज्यादा एक कुशल पेशेवर, एक विचारक और मनोरंजनकर्ता के रूप में देखना ज्यादा ताजगी भरा लगता है, ज्यादा रियल लगता है।
और मेरे लिए उन्हें इस तरह जमीन पर उतार कर देखने से उनका कद घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। ये जानना कि वो अपने समय और शिक्षा की उपज थे और फिर भी उन्होंने भाषा और इंसानी समझ की ऐसी ऊंचाइयां छुईं, ये बात उन्हें और भी ज्यादा हैरतअंगेज बना देती है। वो म्यूजियम में रखी मूर्ति नहीं बल्कि एक ऐसे दिमाग लगते हैं जिनसे आज भी संवाद किया जा सकता है, जिनसे आज भी सीखा जा सकता है।
जाते जाते एक सवाल मन में आता है, अगर शेक्सपियर आज लिख रहे होते इस सोशल मीडिया और AI के जमाने में, तो उनके नाटक कैसे होते? वो किन दबाव और प्रेरणाओं से जूझ रहे होते? कौन से नए भूत और डायने उनके किरदारों को सता रही होती? सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।